लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि खेल लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण साक्षात्कार का अवसर बने तथा विश्व शांति में योगदान दें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। अपना विधान याद कर, देश की गुफाएं हिंसा के अड्डे बन गई हैं। पद दलितों को निराश मत होने दे, दरिद्र और निस्सहाय तेरे नाम की स्तुति करें। ईश्वर उठ और अपने पक्ष का समर्थन कर। उन नासमझ लोगों की निरंतर होने वाली निंदा याद कर, अपने बैरियों की चिल्लाहट को, अपने विद्रोहियों के निरंतर बढ़ने वाले कोलाहल को न भुला। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के अंतिम तीन पद, जिनकी व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन का रचयिता प्रभु ईश्वर को सृष्टिकर्ता, सृजनहार और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तथा उनसे विनती करता है कि वे ईश भक्तों और धर्म परायण लोगों की रक्षा करें, उन्हें उनके अत्याचारियों से बचाएं। धूर्त, दुष्ट एवं कुकर्मी को सफल होते देख वह हैरान होता है कि प्रभु ईश्वर क्यों अपना सामर्थ्य प्रकट कर उनका विनाश नहीं करते। भजन के 20 से 23 तक के पदों में भी वह अपनी इस गुहार को जारी रखता है। वह प्रभु ईश्वर से अनुनय विनय करता है कि वे अपना विधान याद करें, उस प्रतिज्ञा को याद करें जो उन्होंने हमारे पूर्वजों के समक्ष सिनई पर्वत पर की थी। उन शब्दों को याद करें जिनमें उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारा प्रभु होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। अनर्थ की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहता है कि प्रभु की महिमा खतरे में पड़ गई है, क्योंकि देश की गुफाएं हिंसा के अड्डे बन गए हैं और प्रभु की स्तुति करने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा है। दंभकारी और अहंकारी मनुष्यों के कृत्यों पर रोक लगाने तथा अपने पक्ष का समर्थन करने का वह आर्थ निवेदन करता है, ताकि ईश भक्तों के भले कार्य, बैरियों की चिल्लाहट और विद्रोहियों के निरंतर बढ़ने वाले कोलाहल के नीचे न दब जाएं। श्रोताओं, 74वें भजन के इन शब्दों पर चिंतन करते हुए हमने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था कि कठिनाई में पड़ने पर विश्वासी मनुष्य सदैव ईश्वर को पुकारता है। क्योंकि वह भली प्रकार जानता है कि उसके संकटपूर्ण क्षण में उसका आसरा केवल ईश्वर है। ईश्वर ही उसका दुर्ग, उसकी शरण शिला और उसका रक्षक हो सकते हैं। इस संदर्भ में हमने आपके समक्ष नाजी काल के दौरान उत्पीड़न का शिकार बने यहूदियों और सोवियत संघीय साम्यवादी काल के दौरान उत्पीड़ित ख्रिस्तियों का उदाहरण रखा था, जो अपार कष्ट भोगने के बावजूद ईश्वर को पुकारते रहे थे। वस्तुतः श्रोताओं, स्तोत्र ग्रंथ का 74वां भजन बाइबल पाठकों के समक्ष एक बार फिर इस तथ्य की प्रकाशना करता है कि संसार में भलाई के साथ साथ बुराई का भी अस्तित्व है। इसलिए मनुष्य सदैव सतर्क रहे तथा बुराई को भलाई पर हावी न होने दे। वह प्रभु ईश्वर के नियमों पर चलता हुआ अपने दायित्वों का निर्वाह करे और बुराई को भलाई पर कदापि विजयी न होने दे।
उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहाँ जो सोता है। उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहाँ जो सोता है। उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहाँ जो सोता है। सिर पर तो काल पुकार रहा, सिर पर तो काल पुकार रहा, अब काहे जीवन खोता है। उठ जाग मुसाफिर चेतन हो, अब रैन कहाँ जो सोता है। उठ जाग मुसाफिर चेतन हो।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 75वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन में ईश्वर को संसार का न्यायकर्ता घोषित करते हुए भजनकार विनाश न करने की उनसे अपील करता है। इसके प्रथम दो पदों में वह कहता है, ईश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि 75वां भजन प्रभु ईश्वर की महिमा में रचा गया एक गीत है। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति करने वाला प्रशस्ति गान है। जैसा कि हमने 74वें भजन में देखा, मनुष्यों के समक्ष प्रभु ईश्वर इमानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ हैं नाम से प्रकट हुए। प्राचीन व्यवस्थान के युग के लोग प्रभु ईश्वर के अपूर्व कार्यों को देख चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विश्वास अटल रहा था कि चाहे जो भी कठिनाई आएगी, ईश्वर उन्हें उन कठिनाइयों से उभारेंगे, तथा यही उनके धन्यवाद ज्ञापन का कारण बना। उस युग के लोग नबी ईसाया के ग्रंथ के 30वें अध्याय में निहित 26वें पद से मानो आश्वस्त हुए थे, जिसमें लिखा है, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश सद्गुना प्रचंड होगा। इस प्रकार श्रोताओं, 75वें भजन का रचयिता 74वें भजन में निहित प्रश्नों का उत्तर दे देता है। आगे 75वें भजन के 3 से लेकर 8 तक के पदों में प्रभु ईश्वर के वचनों को भजनकार इन शब्दों में व्यक्त करता है। लिखा है, निर्धारित समय आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा, पृथ्वी अपने सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ। ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो, क्योंकि न तो पूर्व से न पश्चिम से और न मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है, वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। श्रोताओं, भजनकार उक्त शब्दों से स्पष्ट कर देता है कि कहीं से भी उद्धार संभव नहीं है। उद्धारकर्ता केवल प्रभु ईश्वर हैं और प्रभु ही निर्धारित समय आने पर भक्त का उद्धार करते हैं। संकट कब टलेगा और कठिनाइयां कब पार होंगी, यह निर्णय मनुष्य नहीं ले सकता, क्योंकि केवल ईश्वर न्याय करता है। प्रभु ही एकमात्र उद्धार करता है, वे मनुष्यों को संकट से उबारने वाले हैं। अस्तु, मनुष्य इस भ्रम में कदापि न पड़े कि वह अपने जीवन का संचालन खुद कर सकता है। इस भ्रम में न पड़े कि वह पीड़ाओं, रोगों, भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं से भरे विश्व रूपी भंवर से स्वयं निकलने में समर्थ है, अपितु याद रखे कि उसे प्रतिपल ईश्वर की जरूरत है। इसलिए ईश्वर में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करे, उनकी अनुकंपा की याचना करे तथा ईश नियमों पर चलता हुआ प्रभु ईश्वर का गुणगान करे और उनकी ही महिमा का बखान किया करे।
बखान